ओम शांति। जैसे हमारे सेशंस जा रहे हैं सुबह से भी, आपने बहुत अच्छी बातें सुनी संबंधों के बारे में, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ये ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं, हमारे मन में भी बहुत सारे विचार अपने लिए, परिवर्तन के लिए, प्लानिंग के लिए आ रहे हैं। आप सभी विजुलाइज कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे अपने जीवन में। तो हम सबके सामने कहीं ना कहीं वो एक एक्शन प्लान भी इमर्ज हो रहा है ना? वापस जाकर हमें कैसे हर एक जीवन के क्षेत्र में इन बातों को अप्लाई करना है, इन बातों को प्रोग्राम से जो सीखा है उसको एक्चुअल अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना है। तो वो एक्शन प्लान जैसे मन में आता जा रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन फिर एक विचार मन में ये भी आ जाता है, करना चाहते हैं लेकिन कर सकेंगे हमेशा इसको स्थाई अपने जीवन में, ये बातों को याद कर सकेंगे, प्रैक्टिकल में धारण कर सकेंगे, ऐसा विचार भी आता है। कोई कोई से हम सुन रहे थे कि आप कह रहे थे कि हम ट्राई करेंगे, नहीं, क्योंकि इस समय तक हमें जो भी अपने जीवन में पुरुषार्थ करना था वो हम अपनी हिम्मत से, अपनी समझ से, अपने पुरुषार्थ से कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब हमें परमात्मा का साथ मिल जाता है, जो हम राज्यों के द्वारा अपने मन बुद्धि को उनके साथ कनेक्ट करके उनको साथी बना लेते हैं, तो जीवन में हर परिवर्तन सहज हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ हमारी शक्ति काम नहीं करती है, हमारी सिर्फ हिम्मत होती है, लेकिन हमें हर पल हर क्षण मदद परमात्मा से प्राप्त होती है। और जब परमात्मा की मदद हम अनुभव करते हैं तो वो कार्य सहज हो जाता है, है ना? आपने ऐसे बहुत सुंदर अनुभव किए हैं ना, पहले भी किए हैं ना, जो हम सुन रहे थे कि हम ऐसे मिरेकल्स अपने लाइफ में क्रिएट किए भी हैं और अब हर बार क्रिएट करना चाहेंगे। तो परमात्मा के साथ का अनुभव ये हर हमारे एक्शन प्लान को रियल में लाने के लिए बहुत जरूरी है। और वो साथ का अनुभव हर पल कैसे कर सके, बैठकर जब हम मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब तो फिर भी थोड़ा एकाग्रता होती है, लेकिन धीरे धीरे कारोबार में रहते हुए संबंध संपर्क में आते हैं, जिम्मेवारियां जो हमारी है उसको हम निभाते हैं, तो उस समय ये बातें थोड़ी भूल जाती है ना। तो ये बातों को एक जीवन शैली में हम ले आ सके, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन इज नॉट अबाउट जस्ट एन एक्टिविटी विच वी आर डूइंग बाय सिटिंग फॉर सम टाइम इन साइलेंस, चेकिंग, चेंजिंग, विजुलाइजेशन, एफर्मेशंस। तो ये सिर्फ कुछ एक्टिविटी नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में जीवन में ये करते करते इसको हमें अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, जीवन शैली बना देनी है। तो राजयोग वास्तव में एक बहुत सुंदर परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ जीवन जीने का तरीका है, एक बहुत सुंदर जीवन शैली है, जिसमें हम हर कारोबार में रहते हुए निश्चिंत रह सकते हैं, हमारे मन को हम बहुत लाइट और इजी भी रख सकते हैं, और कारोबार में हमारी एकाग्रता भी रहती है। तो हम ये साइंस जो परमात्मा ने हमें सिखाया है उसके बारे में आज और थोड़ा स्पष्ट जानकारी लेंगे। वैसे तो आप जिस दिन से आए हैं आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं ना, हर सेशन के बाद 2-3 मिनट 5 मिनट तक का भी अभ्यास कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो हमारे मेडिटेशन रूम में जाकर, 2-3 स्थान पर यहाँ मेडिटेशन रूम है, तो वहां बैठकर थोड़ा साइलेंस का अनुभव कर रहे हैं, हाथ ऊपर करें, जरूर इसका लाभ लीजिए। जैसे आपको बताया गया कि यहाँ की एनर्जी जो है वो हमें सहयोग देगी, वातावरण जो है हमें सहयोग देगा, तो ये बहुत सुंदर अनुभव आप बीच बीच में जहां भी आपको समय मिलता है तो आप जरूर करिएगा, अभ्यास करिएगा। तो हमने जिस दिन से आए अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आज उसकी विधि को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, ताकि फिर ये अभ्यास क्या हो जाए, नेचुरल हो जाए, स्वाभाविक हो जाए। जैसे आज हमें अपने परिवार वालों को याद करना, जो हमने देखा कि हर संबंध को हमें सशक्त करना है, तो उनको याद करना सहज है ना, इजी है ना, यहाँ बैठकर भी जब भी परिवार की बात आती है तो आप मन बुद्धि से वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हमें परमात्मा, जिनका परिचय भी हमने प्राप्त कर लिया है कि उनको हम शिव बाबा कहते हैं, उनको भी उतना सहजता से और प्यार से हम याद कर सके। तो हम देखते हैं कि ये राजयोग शब्द अगर हम लें तो दो शब्द मुख्य है इसमें, राजा और योग। तो राजा अर्थात बचपन में भी हमारे माता पिता हमें राजा बेटा कहते थे, कहते हैं ना, आप भी अपने बच्चों को कहते थे ना, अच्छा लगता था जब कहते हैं हमें राजा बेटा, अच्छा लगता था। राजा अर्थात जो मालिक है, जो जिसके पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। तो ऐसा योग जिससे हम अपने जीवन के मालिक बन जाए, इनर लीडरशिप, अपने जीवन के ही मालिक बन जाए, अपने शरीर के, अपने कर्म इंद्रियों के और अपने जीवन के, अपने डेस्टिनी के, अपने हर रिस्पॉन्स के। जो हमने सीखा कि हम जो परिस्थिति आ रही है वो भिन्न है, जो हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, वो हमारी चॉइस है। ये चीज को हमने स्पष्ट अभी समझ लिया। तो उसमें हम मालिक बनकर हर समय अपने रिस्पॉन्स को चूज कर सके, तो अपने जीवन के ही मालिक बन जाए। ऐसी सुंदर जो हमें योग की विधि परमात्मा बैठकर सिखाते हैं। तो बनना क्या है? राजा अर्थात मालिक अपने जीवन का। आज तक हमने क्या कोशिश की कंट्रोल करने की? औरों को कंट्रोल करने की कोशिश की ना? माता पिता है तो फिर किसको कंट्रोल करने की कोशिश की? बच्चों को। कई बार हम अपने जीवन साथी को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे क्लिनिक में कारोबार है तो फिर वहां कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में जिम्मेवारियां हैं। तो मोस्टली हमने देखा हमारा लक्ष्य रहता है किसी न किसी को हमें मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, दिशा देना है, उनको गाइड करना है। लेकिन हमें अपने आप को फिर से स्वयं को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, इनर लीडरशिप जो है, स्वयं के जीवन के राजा बनना, वो हमें परमात्मा सिखाता है। अब जब हम स्वयं के राजा बन जाते हैं तो क्या हो जाता है? औरों को भी दिशा देना सहज हो जाता है, क्योंकि वो हमें देखकर सीखते हैं, एक उनके सामने रोल मॉडल बन जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी विधि जो परमात्मा हमें बहुत सहज विधि सिखाते हैं। तो ये योग शब्द का अर्थ क्या है? योग अर्थात ये युज शब्द से आया हुआ है। युज अर्थात संस्कृत शब्द है कनेक्शन, रिलेशनशिप, संबंध, जोड़ना, समीप आना। तो योग और वियोग, योग माना समीप आना, वियोग माना दूर होना। तो हमारा किसका किसके साथ योग? अब तो हमने जान लिया है राजयोग में किसका किसके साथ योग होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ योग। तो ये समीप संबंध जो हमें जोड़ना है, तो उस रूप से हम देखते हैं कि ये योग में दो पार्टीज हैं, एक है स्वयं मैं आत्मा और दूसरा है परमात्मा। अब दोनों का स्पष्ट परिचय हमें परमात्मा ने दिया, क्योंकि अपने आप को भी हम नहीं जानते थे, अपने एक्सटर्नल आइडेंटिटी, अपने फिजिकल सेल्फ को, जो प्राप्त किया हुआ बाह्य व्यक्तित्व है, उसको ही आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा। तो स्वयं का परिचय, जो सत्य परिचय है, वो परमात्मा हमें देते हैं। और फिर परमात्मा ने अपना परिचय भी हमें बताया कि मैं कौन। परमात्मा भी आत्मा के पिता है, तो हमें वो भी परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ कि परमात्मा क्योंकि आत्मा के पिता है इसलिए स्वरूप में समानता है। जैसे आत्मा भी एक दिव्य लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है, ऐसे परमात्मा का भी स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और वो आत्मा के मात पिता है। परमात्मा जो है स्पिरिचुअल पेरेंट है। परमात्मा के हमारे साथ सर्व संबंध है, इसलिए भक्ति में हमने बहुत सारे संबंधों का गायन भी किया है। तो ये योग अर्थात ये कनेक्शन से हम धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। जैसे ही हम मालिक बन जाते हैं तो हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा हम जो कार्य कराना चाहें वो करा सकते हैं। जैसे हमने पहले दिन आत्मा के परिचय में देखा कि शरीर और आत्मा का संबंध, जैसे एक उदाहरण के रूप में हमने देखा गाड़ी और ड्राइवर का, तो जैसे ड्राइवर के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है तब तो वो उसी कंट्रोल के आधार से वो अपनी ड्राइविंग करता है, सामने से गाड़ी आ रही है कंट्रोल है तब वो ब्रेक मार के एक्सीडेंट से हमें बचा लेता है। ऐसे ही आत्मा के पास कंप्लीट पावर प्राप्त हो जो वो अपने कर्म इंद्रियों द्वारा जो कर्म करना चाहे वो कर सके। जैसे आज हम कई बार कहते हैं कि हमें ये बोलना नहीं था लेकिन मुख से निकल गया, या हमें ये देखना नहीं था, आप यहाँ बैठे हैं सामने आप मुझे देख रहे हैं, कोई आजू बाजू से आकर पीछे से बैठ जाता है नहीं तो ध्यान चला जाता है, कौन आया जाता है। हाँ तो देखना नहीं था लेकिन आंखें वहां चली गई, तो कई बार हम कहते इससे, तो हमारा संपूर्ण इन कर्म इंद्रियों पर राज्य आज नहीं है। तो ये राज्यों के अभ्यास से धीरे धीरे आत्मा मालिक बनकर हर कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। दूसरा जो हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, स्थूल कर्म इंद्रियां फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हमारी अंतर की संस्था, जो हमने पहले दिन देखा कि आत्मा के पास ये तीन शक्तियां हैं। कौन सी तीन शक्तियां? मन, बुद्धि और संस्कार, और तीनों साथ में कैसे कार्य करते हैं वो भी हमने सेशंस में और क्लियर देखा। तो हम देखते हैं कि आत्मा मालिक बनकर मन को दिशा दे, जो हमने देखा कैसे वो एफर्मेशंस क्रिएट करे, पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करे, जो संकल्प हम निर्माण करना चाहे निर्माण करे, जहां हमने सेशंस में देखा कि जो हो रहा है वो नहीं लेकिन जो हम देखना चाहते हैं वैसा संकल्प हम निर्माण कर सके, तो मालिक बनकर मन को हम दिशा दे सके, हम चूज कर सके अपने विचार, हम जब चाहे अपने विचारों को चेक करके चेंज कर सके। तो जब हम चेक करते हैं तो अगर हमें ध्यान में आ जाता है कि नहीं ये मन जो विचारों में है वो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा व्यर्थ है, तो उसको हम परिवर्तन कर सके, मन को दिशा दे सके, मालिक बन सके। मन का दमन नहीं करना है लेकिन मन को सुमन बनाना, तो राजयोग से धीरे धीरे मन को दिशा देने का अभ्यास होता है जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई भी कारोबार हम करते हैं, क्लिनिक में हैं आप, हॉस्पिटल में, घर में भी, तो हमारे साथी होते हैं। क्लिनिक में भी आपकी टीम होती है, हॉस्पिटल में भी टीम है ना, नर्सेज है, स्टाफ है, टीम है, तो आप जो डायरेक्शन देते हैं वैसा वो करते हैं, नर्स को आप जो कहेंगे वैसा करेंगे, आपको सहयोग देंगे देते हैं ना, तो आप जब इंस्ट्रक्शन देते हैं उस अनुसार वो इम्प्लीमेंट होता है। आपको कोई आपके सीनियर कलीग है, आप किसी के साथ सर्जरी कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट किसी पेशेंट का आप मिलकर कर रहे हैं, तो आपके सीनियर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप उसको फुलफिल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, करते हैं? तो इंस्ट्रक्शन देकर कार्य कराना ये भी सहज, और जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं उसके अनुसार कार्य करना नॉर्मल। मन बुद्धि के लिए हम मन को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मन हमारा इंस्ट्रक्शन मानता है? हर बार मानता है मन? तो वहां थोड़ी गड़बड़ है। जो ये नॉर्मल है हमारे डेली लाइफ में, कारोबार में, वहां अंतर की संस्था में ज्ञात है, ज्ञात है ना, ज्ञात है ना। हाँ, बुद्धि भी हम जिस रूप से दिशा दें, जो निर्णय लेना चाहें, तो कई बार जानते हुए समझते हुए बुद्धि हमारे कोई ना कोई नेगेटिव संस्कार के परवश हो जाती है, और फिर हमें अंतर से, क्योंकि हमारी बुद्धि के पास अंतर से स्पिरिचुअल विजडम है, हम जानते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो इसलिए अंतर से भी जब हमें वो डिसीजन मिलता है कि ये नहीं करना है, तो वो अंतर की जो आवाज है, जो इनर कॉन्शियंस है, वो जो इंस्ट्रक्शन हमें देता है, हम उस इंस्ट्रक्शन को हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं? करते हैं? हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं। तो कारोबार में जो इजी है, इंस्ट्रक्शन देकर काम कराना, इंस्ट्रक्शन सुनकर जो बड़े हैं हमारे सीनियर्स उस अनुसार काम करना, वो यहां अंतर की संस्था में इतना सहज नहीं है, तो फिर से राजयोग के द्वारा हम मालिक बन जाते हैं, जिससे हम ये मन बुद्धि को गाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के आधार से कार्य करा सकते हैं। संस्कार जो समय पर जो हमें यूज करना है वो यूज कर सके। तो जब भी हमने देखा संबंधों में, विचारों में कभी अंतर हो जाता है, हमने देखा सेशन में मतभेद हो जाता है, तो उस समय उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति कौन सा संस्कार चाहिए, कौन से वर्च्यू को यूज करना है, कौन से वर्च्यू को यूज करना है, हमने सीखा कौन से गुण को जी, वो गुण हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उस समय उनके प्रति टॉलरेंस चाहिए, शुभ भावना चाहिए। तो हम चाहते हैं टॉलरेंस को यूज करना, लेकिन कौन सा क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है उस समय, थोड़ा इम्पेशेंस हो जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो जो संस्कार हम यूज करना चाहते हैं उसी संस्कार को हम यूज कर सके, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है उसको हम यूज कर सके। फिफ्थ फोल्डर में से हमने देखा ना फाइव फोल्डर्स, तो वो जो ओरिजिनल नेचर है उसको हम यूज कर सके। तो वो मालिकपन का अभ्यास जो है वो राजयोग के द्वारा हम मालिक बनते जाते हैं। अब ये योग का आधार क्या, क्योंकि हमने देखा योग माना जो यहां हमको परमात्मा रोज की हमारी स्पिरिचुअल स्टडी में हमें एक सहज शब्द देता है, क्योंकि योग शब्द भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि योग करना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन परमात्मा ने हमें बहुत सरल शब्द दिया है कि याद। याद करना सहज है ना, जिसको भी याद कर सकते हैं ना, रिमेम्बरेंस इज वेरी इजी। तो परमात्मा हमें कहता है कि मुझे सिर्फ याद करना है। अब उस याद का बेसिस क्या, आधार क्या, हम देखते हैं कोई भी संबंध में जब हम याद किसी को करते हैं उनके ये चार बातें आधार बनती हैं। पहला है कि हमें उसका परिचय होना चाहिए, संपूर्ण परिचय। हम कोई नए स्थान पर जाकर कोई नए टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में, कोई नई हॉस्पिटल में आपको जाकर अभी एक ड्यूटी संभालनी है, वहां के टीम के साथ काम करना है, तो वहां के लोग आप परिचित नहीं है, इसलिए उनको आप याद नहीं कर सकते जब तक उनका परिचय नहीं हुआ। कोई नए शिफ्ट आप करते हैं अपना घर, कोई नई बिल्डिंग में जाते हैं, नए नेबरहुड में जाते हैं, तो वहां आप किसी को याद नहीं कर सकते क्योंकि परिचय नहीं हुआ। लेकिन जब परिचय हो जाता है, जैसे पहले दिन आप यहां आए तो आपस में परिचय नहीं था, लेकिन फिर अभी फ्रेंड्स बन गए हैं, परिचय हो गया आपस में, कई लोगों के साथ आप साथ में भोजन कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, किन किन के नए फ्रेंड्स हुए यहां, हाथ उठाए, बस इतने ही, आपके नए फ्रेंड्स नहीं बने यहां, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके साथ। तो हम देखते हैं कि परिचय होना अर्थात ये पहला कदम है याद करने में, संबंध जोड़ने में, परिचय। और फिर उस परिचय के साथ साथ संबंध की समीपता, जैसे कोई स्थान पर आप जाते भी हैं कोई नेबरहुड में, वहां आपको परिचय मिलता है कि कोई आपके जो नेबर हैं वो आपके कोई फ्रेंड के सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, उनके फैमिली के कनेक्शन में, तो एक फैमिली कनेक्शन हो जाता है, तो उनकी याद सहज हो जाती है। कोई भी ऐसा प्रसंग होता है तो आप कहते हैं हाँ उनको इनवाइट करेंगे, उनसे हम ये बात करेंगे। तो उस रूप से हम देखते हैं संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है, और उस संबंध में जब स्नेह आता है तो वो संबंध मजबूत बनता जाता है, और फिर उस संबंध में जहां प्राप्ति होती है तो वो संबंध सदा काल के लिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। तो परिचय, अब परमात्मा का परिचय हमें प्राप्त हो गया, क्लियर कि वो कौन है और वो क्या उनका रोल है मेरे लाइफ में। तो आज तक जो हमने समझा ईश्वर को और उनका रोल, नहीं तो इसलिए हम आज तक हमेशा कहते रहे कि वी आर गॉड फियरिंग, कहते कई बार समझते हैं कि भाई ये भावना से हमारा एक सम्मान है ईश्वर के लिए, और हम कहते हैं वी आर वेरी गॉड फियरिंग कहते हैं। लेकिन अब हम यह राजयोग से सीखते हैं कि हमें परमात्मा का परिचय प्राप्त हो गया, उससे संबंध हमारा समीप है, इसलिए हमें परमात्मा के लिए प्यार का अनुभव रखना है, उसे प्यार से याद करना है, तो गॉड लविंग चिल्ड्रन बनना है। गॉड लविंग चिल्ड्रन बनेंगे ना, क्योंकि प्यार से क्या हो जाता है, संबंध समीप आ जाता है, जहाँ स्नेह है वहां याद बहुत सहज हो जाती है। तो परमात्मा का मेरे जीवन में क्या रोल है, वो संपूर्ण परिचय हमने प्राप्त किया। अब तक हम जब भी ईश्वर कहते थे तो रिस्पेक्ट जरूर था, सम्मान जरूर था, लेकिन फिर भी एक दूरी थी, क्योंकि हम समझते थे कि कोई एक परम शक्ति जरूर है जो सब कुछ जानती है, जो सब कुछ करती है, और जैसे वो शक्ति हमें करेगी, हमारे जीवन में जो करेगी वही हमारे जीवन में होगा, ऐसा समझते थे ना? तो वो दूरी भी थी और पूरा परिचय नहीं था। अब हमने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया कि उनका क्या रोल है मेरे लाइफ में, मुझे क्या करना है और वो मुझे कहाँ सहयोग देंगे, ये स्पष्ट हमें परिचय प्राप्त हो गया। तो अब हम उनके साथ बहुत समीप संबंध का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति में हमने गाया भी नहीं, गाया है ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव सखा त्वमेव। आप व्यक्तिगत रूप में आपको ईश्वर से सबसे समीप संबंध कौन सा महसूस होता है? हर एक का अपना अपना अनुभव जरूर होगा, कौन सा संबंध सबसे समीप अनुभव होता है जिससे बहुत सहजता से आप उनको याद कर सकते हैं, फादर का, माता पिता का, और संबंध की समीपता। कई चीजें तो माता पिता को नहीं बता सकते हैं, फ्रेंड है, खुदा दोस्त भी हमारा, और गुरु का कोई भी गाइडेंस हमको चाहिए तो हम गुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में उनको बहुत प्यार से याद करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को हम अपने साथ फील करते हैं, और टीचर का बहुत सारी जानकारी रोज हमें देता है जीवन जीने के लिए जो समझ चाहिए। जानकारी तो बहुत सारी हमारे पास है, लेकिन जो विजडम चाहिए जिससे हम प्रैक्टिकल हमारी डेली लाइफ को सुखदायी बना सके, आनंदमय बना सके, वो समझ हमें देता है। तो इसलिए हमारा टीचर भी है जो बहुत इजी हमको हर चीज समझाता है, और बच्चा भी है। अच्छा ठीक है, हमारा बच्चा भी है जो हर बात हमारी मानता है, नहीं हमारा सदा साथ रहता है, जो काम हम देते हैं वो हमारे लिए कार्य कर लेता है। अच्छा बच्चा भी है और हमारा जीवन साथी भी है। तो ये हर संबंध का एक सुख है, उस परमात्मा के साथ हर संबंध के प्यार का अनुभव, उसका रस जो है वो बहुत सुखदायी है। तो एक पेरेंट के रूप में, एक फादर के रूप में उसका क्या रोल है हमारे साथ? फादर के रूप में जब हम याद करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? सिक्योरिटी महसूस करते हैं, प्रोटेक्शन महसूस करते हैं, और पिता से हमें बहुत सारी शक्ति भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है, और प्रॉपर्टी भी मिलती है। प्रॉपर्टी मिलती है, पिता हमको सब कुछ देता है ना, देता है ना? हाँ। तो परमात्मा भी हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देता है, वो कहता है मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है। परमात्मा के हर गुण और शक्ति के हम मालिक बन जाते, बालक सो मालिक। तो परमात्मा हमें पिता के रूप में सिक्योर फील कराता है, प्रोटेक्ट करता है, सदा साथ देता है, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। तो हर गुण और शक्ति जो आज तक हमने भक्ति में उससे मांगा, अब परमात्मा पिता कहता है ये सब कुछ तुम्हारा। शांति का सागर हमें कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरे पास जितनी शांति वो सब कुछ तुम्हारी है, तुम मास्टर शांति के सागर अर्थात शांत स्वरूप आत्मा हो। तो उनके हर गुण और शक्ति के हम मालिक बनते जाते हैं। तो वो परमात्मा से जो पिता का प्यार है, तब हर गुण और शक्ति को हम अपना महसूस करते हैं। मेडिटेशन में राजयोग के जैसा अभ्यास करते जाएंगे तो परमात्मा से अब कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ उसको साथ अनुभव करना है कि मेरा पिता शांति का सागर और मैं उसका बच्चा मास्टर शांति का सागर, शांत स्वरूप आत्मा। तो हर गुण और शक्ति के मालिक बना देता है। मदर के रूप में क्या करता है? मदर के रूप में उसका क्या रोल है हमारे जीवन में? मदर का क्या रोल होता है? जी प्यार देता है, अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस। नहीं, घर में ऐसे होता है ना जनरली, आजकल तो चेंज भी हो गया डायनेमिक्स, जनरली ऐसा होता था कि पिताजी को कुछ कहना है तो पहले मदर को कह लेते थे ना बच्चे, आजकल कहाँ कहाँ चेंज भी है, पेरेंट्स में फादर्स भी बहुत अच्छे मदर्स हैं, तो हम देखते हैं मदर अर्थात अनकंडीशनल लवर एक्सेप्टर्स। तो परमात्मा भी हमें बहुत प्यार करता है, अर्थात हम जैसे हैं हमें स्वीकार करता है, और फिर हम एक मदर के रूप में हमें बहुत प्यार से शक्ति देता है, सहयोग देता है, जिससे वो हमें और बेहतर हमारे अपने बेटर वर्जन के तरफ हमें ले जाता है, हमारी और संपूर्णता के तरफ ले जाता है। तो एक मदर के रूप में जो वो प्यार की महसूसता है हर क्षण, परमात्मा का जो समीपता का अनुभव है, अपनेपन का अनुभव है, जहां हम हर समय वो अनकंडीशनल प्यार और क्षमा भाव अनुभव करते हैं। जैसे बच्चा कोई गलती करके आ भी जाता है तो वो सहजता से अपने मदर को तो सुना देता है कि मेरे से आज ये गलती हो गई, तो वो जानता है कि शायद मदर तो मेरी बात समझ जाएगी, शायद थोड़ा डांटेगी भी लेकिन फिर मुझे समझाएगी और मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। परमात्मा है ही प्यार का सागर, तो माता पिता के रूप में बहुत प्यार देता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। दोस्त के रूप में दोस्ती का संबंध, अर्थात परमात्मा खुदा दोस्त बन जाता है तो क्या अनुभव कराता है, हम सब ने अनुभव किया हुआ है जी, शेयर कर सकते हैं, हम कोई भी बात अपने दिल की उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आजकल भी हम देखते हैं कि फ्रेंड्स के साथ घंटों शेयरिंग चलती है, ऐसा है ना, बच्चे फ्रेंड के साथ अगर बात करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, टाइम का पता ही नहीं पड़ता है। हम कहीं कॉफी शॉप पर उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं तो क्या होता है, एंजॉय करते हैं ना हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो परमात्मा भी हमारा सच्चा सच्चा दोस्त है, जो हमें हर बात के लिए एक्सेप्ट करता है, समझता है और फिर हमें गाइड भी करता है। तो एक्सेप्टेंस भी 100% है और फिर हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है, दिल की हर बात हम निश्चिंत होकर उनसे कह सकते हैं उसी समय। जैसे कोई भी बात होती है तो नॉर्मली हम फ्रेंड को पहले शेयर कर लेते हैं, फिर उससे गाइडेंस लेते हैं कि अच्छा ये बात हम कैसे पेरेंट्स को कहें, कैसे इसको कहें। तो उस रूप से परमात्मा को हम दिल से अपनी हर बात की शेयरिंग कर सकते हैं, वो हमें हर समय 24/7 उपलब्ध है। जैसे फ्रेंड को हम जब भी कॉल करते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रेंड तुरंत हमें सहयोग देता है, ऐसे 24/7 वो अवेलेबल है हमारे लिए। तो खुदा दोस्त भी है, टीचर है, तो टीचर के रूप में क्या करता है परमात्मा पिता, टीचर के रूप में ज्ञान देता है, लेकिन ये ज्ञान वो इतना सहज रूप में हमें देता है, इतना प्यार से हमें समझाता है और इतना सिंप्लिसिटी से सिंप्लीफाई करके समझाता है, वो तुरंत वो समझ को हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये विशेषता आप सुन देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये ज्ञान है बहुत गहरा लेकिन सिंपल, ऐसा है, फील कर रहे हैं, सिंपल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, सिंपल है, जो तुरंत हम अपने जीवन में इसको अप्लाई करके इससे फायदा ले सकते हैं। तो परमात्मा शिक्षक बनकर हम सबको पढ़ाता है, हमारी डेली स्पिरिचुअल स्टडी है एक घंटे की, जो हम सब स्टूडेंट्स बनकर उस सुप्रीम टीचर से पढ़ते हैं, और उस पढ़ाई की विशेषता है कि हम सब स्टूडेंट एक ही साथ पढ़ते हैं। सारे विश्व में जैसे बताया आपको 140 कंट्रीज से अधिक यहाँ सेवा केंद्र है, तो हर जगह पर एक ही पढ़ाई, जैसे आज की जो डेली हमारी स्पिरिचुअल स्टडी है वो हर स्थान पर वही स्टडी, और फिर भाषाओं में थोड़ा ट्रांसलेट हो सकता है लेकिन बातें वही वही स्टडी। और हर प्रकार के जैसे स्टूडेंट्स जो हम बैठे हैं, अभी तो आप मेडिकल विंग के आए हैं प्रोग्राम में, तो मोस्टली आप मेडिसिन से जुड़े हुए डॉक्टर्स और सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में अटेंड करें प्रोग्राम। हमारी जो डेली स्पिरिचुअल स्टडी है उसमें कोई आयु का भी महत्व नहीं है, हर प्रकार की आयु, हर प्रकार के बैकग्राउंड के लोग साथ में पढ़ते हैं, छोटे यंग बच्चे भी होते हैं, बड़े वृद्धावस्था वाले भी होते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड एजुकेशन का है, साइंस का है, आप जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी वही स्पिरिचुअल स्टडी पढ़ रहे हैं। और जो बैकग्राउंड में कोई एजुकेशन नहीं है, बहुत सिंपल मदर्स हैं या डेली जो कार्य करने वाले ऐसे भाई हैं, वह भी उसी स्पिरिचुअल स्टडी जिसको हम मुरली कहते हैं उसमें उसी क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, हर एक वही पढ़ाई पढ़ रहा है। तो बहुत डीप भी है, गहरी भी है बातें, लेकिन सहजता से हमें समझाता है ताकि उसको हम यूज कर सके अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल बातें। फिर हमारा जीवन साथी भी है, ये संबंध सबसे समीप और प्यारा है, जो परमात्मा हम आत्माओं का लाइफ पार्टनर है, हमारा सोल मेट है। हर दिल की बात वो हमारी समझता है और जब हम उनको शेयर करते हैं वो बातें, तो वो समय पर हमें वो बातों के लिए मदद करता है, हमारे मन को बुद्धि को शक्ति देता है, हमारे हृदय को हील करता है। एक लाइफ पार्टनर के रूप में वो हमें इतना प्यार देता है कि उसका स्नेह हमारे अंदर की बातों को, जिसमें हमें थोड़ा कोई बात का दर्द हुआ हो, कोई अंदर के इमोशनल वूंड्स हो, वो हील करता है। तो वो हमारा जीवन साथी है, जहाँ हर क्षण वो साथ का, कंपेनियनशिप का अनुभव कराता है। तो ये भी एक बहुत सुंदर संबंध है जो आप अनुभव करेंगे राजयोग के द्वारा। तो ये संबंधों से जब हम उनको याद करते हैं, तो वो संबंध की समीपता से हम परमात्मा से बहुत प्यार का अनुभव करते हैं, और जहां हम प्यार का अनुभव करते हैं तो वो संबंध और शक्तिशाली बन जाता है। अब हमारा ईश्वर के प्रति प्यार ज्यादा है या ईश्वर का हमारे लिए प्यार ज्यादा है, क्या कहेंगे? Whose love is more powerful and strong? ईश्वर का। हमारा क्यों नहीं, हमारा क्यों नहीं? अच्छा, वो प्यार का सागर है इसलिए, ठीक है। तो उसका प्यार तो है ही, लेकिन उसके प्यार का आप अनुभव कर सकते हैं जब आप उसको प्यार से याद करते हैं। तो जब हम प्यार से उसको याद करेंगे तब उस प्यार को हम अनुभव कर सकते हैं, वो वेवलेंथ हमारी मैच हो जाएगी। तो जब हम एक सच्चे दिल से, बहुत निष्फल मन से, बहुत पवित्र मन से उसको याद करते हैं, निर्मलता से याद करते हैं, सरलता से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं, वो समीपता का अनुभव होता है। तो हम देखते हैं कि छोटी सी कहानी जो उस दिन मैं शेयर भी करना चाहती थी आपसे, कि ये कहानी मैंने सुनी और बहुत बार मैंने शेयर की है। ये कहानी जो है एक छोटे बच्चे की है। तो ये बच्चा जो है वो रोज अपने पेरेंट्स के साथ जरूर टाइम स्पेंड करता है, लेकिन हर संडे उसके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग को वो चर्च में, क्रिश्चियन बैकग्राउंड के तो चर्च में जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है इसलिए सुबह अगर वो सोते हुए वो चले जाते हैं, घर में और केयर टेकर हैं, लेकिन वो बच्चे को हमेशा होता है कि मुझे भी अपने पेरेंट्स के साथ संडे चर्च जाना है। तो वो मोस्टली जाग जाता है, तो फिर वो इंसिस्ट करता है। तो उस दिन वो जाग जाता है और वो पेरेंट्स के साथ इंसिस्ट करके चर्च चला जाता है। अब चर्च में मास हो रहा है, मॉर्निंग प्रेयर हो रही है, तो पेरेंट्स तो वहां प्रेयर में बिजी हो जाते हैं, बच्चे को वो गार्डन में छोड़ देते हैं, और भी थोड़े बच्चे आए हुए हैं वो खेलते हैं। अब उस दिन थोड़ा उनका कम्युनिटी सर्विस भी प्रोग्राम है, तो प्रेयर पूरा हो जाता है, उसके बाद उनका पूरा संगठन दूसरे स्थान पर जाकर वो कम्युनिटी सर्विस की प्लानिंग कर रहे हैं। अब कुछ समय के बाद जब बच्चा देखता है अभी तक पेरेंट्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा वहां गार्डन से लेकर वो चर्च के अंदर आ जाता है। अब चर्च के अंदर तो सभी प्रेयर पूरा करके चले गए हैं, तो वो अंदर चर्च में जाता है। जब वो लास्ट में चर्च के एंड में जाता है तो वहां एक बोर्ड पर लिखा हुआ है नो परमिशन, क्योंकि अंदर जो है वो प्रीस्ट है। तो बच्चा तो नो परमिशन उसके लिए तो है ही नहीं एप्लीकेबल, तो बच्चा तो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। और अंदर वो देखता है कि जो प्रीस्ट है, फादर जो है, वो प्रेयर कर रहे हैं। तो बहुत सीरियसली, बहुत डेडिकेशन से वो हाथ जोड़कर कोई प्रेयर कर रहे हैं। तो छोटा बच्चा है, थोड़ा नटखट भी है, तो जैसे ही वो फादर को देखता है तो वो भी उस रूप से एक्टिंग कर लेता है, वो भी बैठ जाता है, और जैसे फादर बैठा हुआ है वैसे ही वो नील करके, डाउन करके, हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहा है, और बीच बीच में आंखें खोलकर देखता जाता है कि फादर क्या कर रहे हैं। तो थोड़े समय के बाद फादर को फील होता है कि बच्चे का प्रेजेंस, तो वो आंखें खोलता है और देखता है बच्चे को। तो बच्चा जो है उसी के रूप से एक्ट करके बैठा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। फादर कहता है कि आप क्या कर रहे हो? तो बच्चा जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहता है आप क्या कर रहे हो? तो फादर कहता है कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूं। तो बच्चा कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा हूं। अब फादर जो है थोड़ा इरिटेट हो गया है क्योंकि बच्चा बहुत ओबीडिएंट नहीं है और ऐसे बात कर रहा है, तो वो बच्चे को थोड़ा स्ट्रिक्टली कहता है कि ये प्रेयर जो है इसमें कोई हम मस्ती नहीं कर सकते हैं, ये प्रेयर इज सीरियस बिजनेस, इसमें प्रेयर करना है। तो कहा मैं भी प्रेयर कर रहा हूं। तो फिर फादर जो है वो पूछता है बच्चे को तुम क्या प्रेयर कर रहे हो। तो बच्चा फिर फादर को कहता है कि आप क्या प्रेयर कर रहे हैं पहले आप बताइए। तो अब थोड़ा फादर जो है वो गुस्से में आ गया है, अंदर से इरिटेट हो गया है। तो वो फिर क्या करता है, बाइबल खोलकर जो सबसे डिफिकल्ट प्रेयर हो सकती है वो सुना देता है। और बच्चा जो है वो सुन रहा है। अब नेचुरली बच्चे को ज्यादा तो समझ में नहीं आया होगा। तो जो फादर है फिर बच्चे को कहता है कि तुम कौन सी प्रेयर पढ़ रहे थे। तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली ABCDZ तक बता देता है। तो फिर से फादर उसको कहता है कि बच्चा ये मजाक नहीं है, ये प्रेयर है। तो बच्चा एक बहुत अच्छा जवाब देता है। वो कहता है कि फादर आप जो भी प्रेयर सुना रहे हैं उसमें A to Z के बीच के ही शब्द है ना, मैंने गॉड को कह दिया आपको जैसे शब्द जोड़ने आप जोड़ लो। अब हम देखते हैं कि ये जो प्यार से परमात्मा को जो दिल से याद करने की बात है, वहां याद जो है उस संबंध में समीपता का अनुभव कराती है, वहां याद जो है वो प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो जब हम बहुत प्यार से सच्चे दिल से उनको याद करते हैं संबंध से, तो योग हमारा सहज लग जाता है। और हम जैसे जैसे योग करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, हमें बहुत सारी प्राप्तियां, बहुत सारे सुंदर अनुभव जो हमने देखा, बहुत सारे मिरेकल्स अपने लाइफ में अनुभव होंगे। तो जैसे जैसे उस मेडिटेशन में हमें एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, वो प्यार का, शांति का, शक्ति का समय अनुसार अनुभव हम करेंगे। जो हमारी सिचुएशंस हैं उसमें हम परमात्मा को साथी बनाकर जब हम कार्य उसके साथ करेंगे, उसके गाइडेंस से करेंगे, उसको जिम्मेवारी देंगे, अब ये कार्य है आपको मुझसे कराना है, तो ऐसे बहुत सुंदर हम जब अनुभव परमात्मा के साथ के करेंगे तो बहुत सारी प्राप्तियां होंगी। और जैसे जैसे आत्मा को प्राप्ति होती जाती है, तो मन की विशेषता है कि जहां प्राप्ति होती है मन वहां सहज लग जाता है। तो आपको जो सुंदर अनुभव होते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस, वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको प्रेरणा देंगे, वो आपको ईश्वर की याद के तरफ खींचेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका मन इस याद के लिए खींचता जाएगा, अंदर से आपको खींच होगी कि मैं थोड़ा समय बैठकर उनको याद करूं, या कर्म करते हुए भी उनसे मन से बातचीत करूं, उनको साथ अनुभव करूं। अब विधि क्या है? ऐसे तो देखा गया, हमने उस दिन भी देखा कि परमात्मा तो पिता है, माता पिता है, तो बच्चे को वास्तव में माता पिता को याद करने की कोई विधि नहीं होती। विधि होती, सिखाते हैं आप? नहीं, नेचुरल है ना, माता पिता है तो संबंध इतना समीप है तो याद तो नेचुरल है। फिर भी क्योंकि बहुत समय से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हैं, बहुत समय से हमने अपने बाह्य व्यक्तित्व को ही अपना संपूर्ण व्यक्तित्व समझा, तो आत्मा का परिचय भी नहीं था स्पष्ट रूप में, आत्मा की स्मृति भी नहीं थी, ऐसा है ना। आत्मा शब्द तो कहते थे लेकिन क्या उस अवेयरनेस में रहते थे? अभी भी हमने जानकारी प्राप्त की है लेकिन सारा दिन अगर चेक करें तो कौन सी अवेयरनेस है, सोल कॉन्शियस है या बॉडी कॉन्शियस है? ज्यादा समय बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। तो क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है इसलिए क्या होता है, शरीर की स्मृति रहने से, शरीर से जिनका संबंध है, कारोबार है, संबंध है, परिवार है, जिम्मेवारियां है, इन सब बातों में ही सारा दिन मन बुद्धि बिजी रहती है, एंगेज रहती है। जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं अनुभव करते हैं तब तक हमारा ईश्वर के साथ, क्योंकि वो आत्मा के माता पिता है, आत्मा को उनसे शक्ति, प्यार, आनंद, सुख मिलना है, तो इसलिए सोल कॉन्शियस होने से ही फिर परमात्मा के साथ मन बुद्धि की एंगेजमेंट होती। तो बहुत समय से बॉडी कॉन्शियसनेस के वजह से वो संबंध की समीपता नहीं है, इसलिए थोड़ा विधि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बैठकर आपको क्या करना है। बैठ तो जाते हैं लेकिन मन बुद्धि को कैसे दिशा देनी है, क्या सोचना है। तो अगर हम देखें कि परमात्मा को याद करना, योग लगाना, माना एक जैसे मीटिंग है, किसी के साथ आप मिलने जाते हैं, नहीं तो कोई विशेष व्यक्ति के साथ अगर आपकी मीटिंग है, आपका कुछ आगे प्रोजेक्ट है जो आप अपने मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं, कोई आपने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, कोई आप पेपर प्रेजेंटेशन में करना चाहते हैं, उसके लिए कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो उसी क्षेत्र में शायद काम कर रहे हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग है, तो जब भी हम किसी के साथ मीटिंग फाइनलाइज करते हैं तो उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है। पहले तो वेन्यू क्या है, वेन्यू फिक्स करते हैं ना मीटिंग का, किस स्थान पर हम मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं किसी से भी मीटिंग में, हॉस्पिटल में अगर आप मिल रहे हैं, चाहे उनके हॉस्पिटल या आपके हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में कहाँ मिलते हैं, रिसेप्शन एरिया या मीटिंग रूम में, आपके पर्सनल मीटिंग रूम में कहाँ मिलेंगे, रिसेप्शन एरिया में नहीं, क्यों, रिसेप्शन एरिया में तो बहुत बड़ी एरिया होती है, मीटिंग रूम तो छोटा भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस रूम छोटा होता है, डिस्टर्बेंस होगा। तो हमको भी जब परमात्मा से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे, ये फिजिकल वर्ल्ड में जहां हमारे कारोबार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी यहाँ हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस है। परमात्मा हमें कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ। परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है, परमधाम, हमने देखा कल विजुअल भी देखा ना हमने, परमधाम वो शांति की दुनिया जो आत्मा का भी ओरिजिनल होम है और परमात्मा का भी घर है, जिसको हमने ब्रह्म महातत्व के रूप में याद किया, परमधाम कहा, शांति धाम का, तो वो हमारा मीटिंग रूम। अच्छा, फिर ये मीटिंग में और क्या डिसाइड होना चाहिए, पहले तो हमारा एम ऑब्जेक्ट, नहीं मीटिंग क्यों कर रहे हैं, एजेंडा डिसाइड होता है, डिसाइड होता है कि भाई किसके लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हमें लक्ष्य नहीं पता है तो फिर आधा घंटा एक घंटा मीटिंग का टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन जो लक्ष्य लेकर हम मिल रहे हैं वो हम शायद नहीं अचीव कर सकेंगे। तो लक्ष्य, तो यहां परमात्मा से मीटिंग का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो हम क्यों मिलना चाहते हैं उनसे, क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, शांति का अनुभव करने के लिए, शक्ति का अनुभव करने के लिए, उस संबंध के प्यार का अनुभव करने के लिए, तो वो लक्ष्य हमारा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्थान हमने डिसाइड कर लिया, लक्ष्य डिसाइड कर लिया, अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस, वो हमारी मीटिंग कैसी है, फॉर्मल मीटिंग है या इनफॉर्मल, तो हम किस ड्रेस कोड में जाएंगे। तो अगर हमारी कोई कॉन्फ्रेंस आदि के लिए मीटिंग है तो फॉर्मल है, तो फिर हम फॉर्मल रूप में जाएंगे। अगर हमारे कोई पर्सनल फैमिली के लिए कुछ बातचीत करनी है तो हम इनफॉर्मल। यहाँ कौन सा ड्रेस कोड होगा, परमधाम में जाने के लिए ड्रेस कोड कौन सा होगा, शरीर के साथ जा सकते हैं, जा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि वो वहां किसका घर है, आत्माओं का घर है, इसलिए हमें अपने आप को इस शरीर रूपी ड्रेस को हमें भूलकर किस स्मृति में जाना है, सोल कॉन्शियस होकर फिर हम उस मीटिंग के लिए परमात्मा के पास पहुंचते हैं। अच्छा, मीटिंग में हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि किस भाषा में आपस में बातचीत करेंगे, नहीं जो भाषा में सामने वाले व्यक्ति समझ सके, तो हम देखते हैं इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल कोई लैंग्वेज है, वो यूज करते हैं। यहाँ कौन सी भाषा होगी, परमात्मा के साथ मीटिंग में कौन सी भाषा होगी, जी दिल की भाषा होगी, स्नेह की भाषा होगी, संकल्पों की भाषा होगी, थॉट्स के द्वारा। तो यहाँ हमारा मन मुख का काम करेगा, मन जो है मुख का काम करेगा, जिससे हम बातचीत करेंगे संकल्पों की भाषा, और वो संकल्प जो है बहुत प्यार से हम उनको, उन संकल्पों का निर्माण करेंगे सच्चे दिल से, तो वो भाषा जो है प्यार की भी भाषा कहा जाएगा। तो हम देखते हैं और साथ में हम विजुलाइज भी करेंगे। विजुलाइज कैसे करेंगे, बुद्धि के द्वारा, मन की आंखें। तो हम बातचीत करेंगे मन के द्वारा संकल्पों की भाषा, विजुलाइज करेंगे मन की आंखें अर्थात बुद्धि के द्वारा। तो हम देखते हैं कि इसमें ये चार स्टेप्स हैं। पहले है विथड्रॉल, तो हमें पहले अपने मन बुद्धि को बाहर की बातों से कुछ समय के लिए विथड्रॉ करना है। अब ये जब हम शुरू शुरू में अभ्यास करते हैं तो ये स्टेप्स हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ समय के बाद जब रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो ये स्टेप्स इतने जरूरी नहीं होते, वो नेचुरल हो जाता है। जैसे ड्राइविंग है, जब आप शुरू शुरू में ड्राइविंग सीखा तो क्या होता है, यंग एज में जब ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, तो हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें कुछ स्टेप्स से गाइड करता है कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अब कुछ समय के बाद आप इतने वर्षों से ड्राइव कर रहे हैं, अब आप कोई स्टेप्स फॉलो करते, याद करते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने ये कहा वो कहा, याद करते? आपका नेचुरल ड्राइविंग हो गया है ना, तो उसी रूप से ये स्टेप्स भी अभी हमारे लिए रेलेवेंट है। कुछ समय के बाद वो नेचुरल हमारा परमात्मा पिता के साथ समीप संबंध हो जाएगा, जो नेचुरल याद में हम रह सकेंगे। तो पहले है मन बुद्धि को हम बाहर की बातों से समेटते हैं, तो एक कछुए के रूप में, टॉर्टोइस के रूप में हम बाहर की कारोबार जो है, उस समय हमारे जो भी जिम्मेवारियां है, हमारे कारोबार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे जो संबंध है, क्योंकि मेडिटेशन कौन करने वाली है? आत्मा। तो देह की जो बातें हैं, कारोबार है, संबंध है, उन सब से कुछ समय के लिए हमें अपने को डिस्कनेक्ट करना है, थोड़े समय की छुट्टी उससे लेनी है। ठीक है, वापस हम आएंगे उस कारोबार के लिए, लेकिन अब कुछ समय के लिए एक ब्रेक लेना है। तो मन बुद्धि को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, रिलेशनशिप से, जो हमारे रोल्स हैं, जो जिम्मेवारी के अनुसार रोल है, उससे भी हम समेट लेते हैं। हम वहां हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर हैं, हमारा ये रोल है, हम परिवार में और रोल्स हैं, माता पिता है, हमारे और जिम्मेवारियां सोसाइटी में भी है, मेडिकल एसोसिएशन में बहुत सारे रोल्स हैं, वो सभी रोलों से हमें थोड़ा डिस्कनेक्ट करना है और अपने रूटीन में दिन में हम थोड़ा समय निकाल रहे हैं अपने लिए। तो ये मन बुद्धि को बाहर से हमने समेटा। फिर सेकेंड लेवल जो हमें समेटना है, अपने आप को इस शरीर के अवेयरनेस से भी समेट कर सोल कॉन्शियसनेस में हमें अपने आप को शिफ्ट करना है। अवेयरनेस बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस में क्यों शिफ्ट करना है? अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? हमें बाहर के वातावरण से, जैसे गाइडेड मेडिटेशन है, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर ही मोस्टली आप ये मेडिटेट कर रहे हैं, तो बाहर का वातावरण शांत है, म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, आपको कोई कमेंट्री मिल रही है, आप उसके आधार से मन को दिशा देकर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जब हम फिर से अपने कारोबार में जाएंगे, वहां हमें वातावरण तो वैसा नहीं मिलेगा, तो जब चाहे हमें उस कनेक्शन को अनुभव करना होगा, तब सोल कॉन्शियसनेस में रहकर हमें कनेक्ट करना होगा, क्योंकि तब वेवलेंथ मैच होगी। जैसे हम किसी को फोन करते हैं तो हम जो नंबर हमने डायल किया वहां कनेक्शन हो जाता है, तो सैटेलाइट में वो कनेक्शन होता है, तब जाके हमारी बातचीत होती। तो ऐसे हमारा वेवलेंथ मैच करने के लिए ईश्वर के साथ हमें सोल कॉन्शियस होना होगा, क्योंकि वह आत्मा के पिता है। तो जैसे हम सोल कॉन्शियस होते हैं तब हम उनको याद कर सकते हैं। इसलिए हमने मंदिर में भी क्या किया, मंदिर में जाने के साथ ही हमने क्या किया, पहले मस्तक में तिलक लगाया। तो तिलक जो है ये एक अवेयरनेस है कि हमें फिर से उस सोल कॉन्शियसनेस में आना है। तो ये विथड्रॉल टू लेवल्स में हमने देखा, बाहर से समेटा, फिर अपने आप को इस स्वयं में भी, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से, इस फिजिकल अवेयरनेस से स्पिरिचुअल अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस में ले गए। दूसरा स्टेप है चिंतन, क्योंकि हमने देखा जो लैंग्वेज है जिससे हम ईश्वर के साथ बातचीत करेंगे वो है चिंतन। तो हम पहले किसका चिंतन करते हैं, कौन मेडिटेशन कर रहा है, आत्मा का चिंतन। तो आत्मा के चिंतन में हम आत्मा के जो सारे गुण हैं उसको हम इमर्ज करते हैं कि मैं आत्मा, हमारे साथ ओरिजिनल वर्च्यूज हैं, कौन से हैं, कौन से हमारे इडेट वर्चूस, हमारे ओरिजिनल कलर्स जो आत्मा के हैं कौन से हैं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं। तो हर गुण को हम स्मृति में लाकर उसको अनुभव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है चिंतन का, सोल, सोल अपनी हर वर्च्यू को अनुभव करती है। तो मैं शांत स्वरूप हूं, तो हम क्या करेंगे, पहले सोल को यहाँ विजुलाइज भी कर रहे हैं, और कल हमने वो विजुलाइजेशन देखे, उससे आत्मा जो है वो शांति के वाइब्रेशंस जो है उससे चारों तरफ फैल रहे, रेडिएट हो रहे हैं, शरीर में भी रेडिएट हो रहे हैं, चारों तरफ भी रेडिएट हो रहे हैं। तो आत्मा की स्मृति, आत्मा के हर गुण की स्मृति, तो शांति की अनुभूति, फिर पवित्रता की अनुभूति, तो आत्मचिंतन। फिर सेकेंड स्टेप है परमात्मा का चिंतन। अब परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ हमने देखा, हमारा मीटिंग रूम कहाँ होगा, परमधाम में। तो फिर हम एक जर्नी लेंगे सोल कॉन्शियसनेस के बाद, हम एक जर्नी लेते हैं जहां हम मन से, जैसे आप यहां सभी बैठे हैं, मैं आपको कहूं कि आप अपना घर देखें जहां आप रहते हैं, इस समय आपका परिवार वहां है, तो बच्चे हैं, जो भी परिवार के सदस्य उनको देखें। जैसे कल हमने एक्सरसाइज किया ना शिवानी बहन के साथ, तो सबने गए थे घर, सबने एक्सपीरियंस किया था, तो वो अवेयरनेस कैसे हम वहां गए स्थान पर, मन के द्वारा। तो ये परम धाम में भी हम मन के द्वारा जाते हैं। तो एक बहुत सुंदर यात्रा हम मन की आंखों से विजुअलाइज करेंगे, जो हमने कल भी विजुअल्स देखे वैसे ही मन के द्वारा हम विजुलाइज करेंगे कि सोल उस जर्नी पर जा रही है, और फिर हम उस सोल वर्ल्ड को भी विजुलाइज करेंगे। कहां मीटिंग रूम है हमारा, वर्ल्ड ऑफ साइलेंस, शांति की दुनिया, प्रकाश की दुनिया, गोल्डन लेड लाइट की वो सुंदर दुनिया। अब ये कॉन्टेम्पलेशन करते करते, चिंतन करते करते हम एकाग्रता का अनुभव करते जाते हैं। धीरे धीरे हमारा मन कोई ना कोई अनुभूति में शांति की, परमात्मा से प्यार की, परमात्मा के साथ के अनुभव की एकाग्रता में, स्थिरता में आती जाती है। और एकाग्रता के बाद फिर हम बहुत गहरी धीरे धीरे अपने अंदर रियलाइजेशंस करते हैं। तो अभी ये जो चार स्टेप्स हैं उसमें प्रैक्टिस के स्टेप्स फर्स्ट और सेकंड है, ये हमें आज से लेकर तीन दिन से आप कर ही रहे हैं, जानते नहीं लेकिन कर रहे थे, तो वो अभी हमें कॉन्शियसली ये दोनों स्टेप्स प्रैक्टिस करना है। जो कॉन्सेंट्रेशन और रियलाइजेशन है वो एक्सपीरियंशियल स्टेप्स है, वो धीरे धीरे अनुभव होंगे। जैसे हम ड्राइविंग की बात कर रहे थे, तो आप ड्राइविंग सीखते हैं, अब आपको ड्राइविंग सीखकर आपको वो लाइसेंस मिल गया है, अब आपके कोई फ्रेंड हैं या आपके कोई कलीग हैं, वो आपको कहें कि चलो अभी हम आप हमें टाउन के तरफ ले जाओ, जो 2 घंटा दूर कोई स्थान है, तो आप तुरंत जाएंगे ड्राइव करके उनको लेके जा सकते हैं? नहीं, क्यों? अभी आपको लाइसेंस तो मिल गया है, जा सकते हैं ना जी, प्रैक्टिस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप उसको कहेंगे नहीं अभी नहीं, थोड़े दिन मुझे प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कहां करेंगे, घर के आसपास, वो भी टाइमिंग्स देखते हैं, मॉर्निंग टाइम या लेट नाइट टाइम जब थोड़ा ट्रैफिक कम है, फिर आप किसी को थोड़ा सा साथ लेकर, कोई अपने फ्रेंड है उसको कहेंगे जो अच्छा ड्राइविंग समझ जानते हैं, उसको साथ में लेते हैं। ऐसे ही ये जो स्टेप्स हैं एकाग्रता के और रियलाइजेशन के, ये धीरे धीरे आएंगे। अब कुछ समय के बाद शायद आप वो 2 घंटे दूर उनको ड्राइव करके किसी को ले जाएंगे, फिर कोई कहेगा चलो बॉम्बे में है तो कहेंगे पूना ले जाओ, नासिक ले जाओ, तो फिर आप कहेंगे नहीं अभी तक मुझे हाईवे का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा मुझे उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ समय के बाद फिर आप वो हाईवे का एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसी के साथ आप ड्राइविंग करेंगे शेयर करके, धीरे धीरे वो भी अभ्यास हो जाएगा, फिर आपके लिए सहज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये पहले 2 स्टेप्स अभ्यास होता जाएगा, धीरे धीरे एकाग्रता और उस परमात्मा के प्यार में, उन शक्तियों में, अनुभूतियों में, वो रियलाइजेशन जो है, प्राप्ति का जो सुख है, वो प्राप्त होता जाएगा। तो ये एक्सपीरियंशियल दोनों स्टेप्स हैं, तो वो थोड़ा समय लगेगा, वो स्टेप्स को हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे। अब मेडिटेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मा को वास्तव में सशक्त कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। तो आत्मा के अंदर के जो गुण और शक्ति की कमी हम महसूस कर रहे हैं, वो हम अपने आप में अंदर भरते जा रहे हैं, रिचार्ज करते जा रहे हैं। तो हम परमात्मा को जो गुण और शक्ति उससे लेना चाहते हैं, हम राज्यों के अभ्यास में उस गुण से ईश्वर को याद करते हैं। जैसे अगर हमें शांति का अनुभव करना है, ताकि हमारे अंदर धीरे धीरे वो शांति की शक्ति अक्यूमुलेट हो जाए, अब वो शांति की शक्ति जब अक्यूमुलेट होती जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर समय पर जब सिचुएशन आपके सामने आएगी और आपको लगेगा कि इस समय मुझे पेशेंट रहना चाहिए, तो अगर आपने मेडिटेशन करते हुए शांति की ऊर्जा को अपने अंदर अक्यूमुलेट किया है, तो समय पर फिर आप पेशेंट रह सकेंगे, इजी रह सकेंगे, आप सामने वाले व्यक्ति की बात सुनकर समझकर फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन शांति की शक्ति को फील किया मेडिटेशन में, लेकिन अक्यूमुलेट नहीं किया, तो क्या होगा? मेडिटेशन में तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर डेली लाइफ में जब सिचुएशंस आएगी तो क्या होगा? वो एक्सपीरियंस को हम वहां कैरी नहीं कर सकेंगे। अब हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ मेडिटेशन में शांति का, सुख का, शक्ति का अनुभव करना, या डेली लाइफ में उस एक्सपीरियंस को कैरी ओवर करना? क्योंकि वही सिचुएशंस आएगी, वही उसकी जरूरत है। जब सिचुएशन आती है जहां कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है जो हमने संबंधों में देखा, या कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जहां कोई डिफिकल्टी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, परिवार में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, कोई परिवार में किसी का डेथ हुआ है, कोई भी बीमार है कोई, तो ऐसी जब डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो उस समय शांत रहना, उस समय औरों को भी धीरज देना, उनकी बात भी शांति से सुनना, उनके मन का जो भी स्ट्रेस है वो शांति से सुनकर उनको फिर भी रिलैक्स करना, वो उस समय आवश्यक है। तो वो तब हम कर सकेंगे जब मुझ आत्मा ने आत्मा के अंदर वो शांति की ऊर्जा को जमा की है। तो मेडिटेशन माना हमें वो एनर्जी को अपने अंदर अक्यूमुलेट करना है, सिर्फ कनेक्ट नहीं करना लेकिन अक्यूमुलेट करना। तो राजयोग जो है इसमें सर्व प्रकार के योग समाये हुए हैं। तो राजयोग कर्म योग भी है, अर्थात कर्म करते हुए भी हम योग कर सकते हैं, मेडिटेशन करना जरूरी है। मन बुद्धि की तार उस परमात्मा के साथ, बुद्धि हमारी उस बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ जुड़ी हुई रहे कर्म करते हुए, ताकि वो हायर विजडम जो है हमें गाइड करेगी राइट डिसीशंस लेने के लिए। दूसरा, हमारी मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ी होगी तो उस समय जो शक्ति की आवश्यकता है, हमें उस समय शांति चाहिए, तो वहां उस शांति के सागर से उस शांति को हम अनुभव कर सकेंगे। हमारा मन में थोड़ा, हमारे मन में हलचल होगी, अपहीवल होगा, थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात में थोड़ा इरिटेशन होगा, लेकिन हमने उसको याद किया, उसके साथ का अनुभव किया, तो परमात्मा वो शांति के सागर जो है वो हमारे मन को उस समय रिलैक्स कर देंगे, शांत कर देंगे, हम उनकी बात सुनकर फिर शांति से उनको जवाब दे सकेंगे। तो इसलिए इसको कर्म योग कहा, कर्म करते भी हमारे मन बुद्धि का योग ईश्वर से। दूसरा, कर्म योग अर्थात हम योगी हैं या नहीं वो हमारे कर्मों से दिखाई देगा। हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं तो इस एनर्जी को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, या सिर्फ हम कुछ समय के लिए वहां मेडिटेशन में सिर्फ वो गुड फीलिंग में रह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल कहां मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे रिस्पॉन्सेस के द्वारा। जब सिचुएशन आएगी उस समय हम कितना शांति से उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आया उस समय हम कितना क्षमा भाव से उस व्यक्ति को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए शुभ भावना रखते हैं। जब क्राइसिस कोई आया उस समय हम कैसे निर्भय होकर हिम्मत से उसको पार करते हैं, तो कर्म योग है। अगर हम बहनें भी या हम समर्पित भाई बहन भी अगर मेडिटेशन रोज हम कर रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ की अगर सिचुएशंस को जब हम डील करते तब अगर रिएक्शन आता है तो फिर भी इसको योगी जीवन नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे योग की अवस्था, हम योग में अक्यूमुलेट कर रहे हैं आत्मा शक्ति को, वो कैसे रिवील होगा, रिफ्लेक्ट होगा? कर्मों में, हमारे डेली सिचुएशंस में। इसलिए इसको कर्म योग भी कहा। साथ में इसमें भक्ति योग भी है। तो अब हमने देखा कि इसमें तो हमने ज्ञान को यूज किया, लेकिन भक्ति में जो परमात्मा के प्रति प्यार है, बुद्धि का सरेंडर है, समर्पण भाव है, है ना? भक्ति में कैसे प्यार से बुद्धि को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वो डिवोशन है। तो यहां पे जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जितना हम प्यार से ईश्वर को याद करते हैं, जो परमात्मा कहता है दिल और दिमाग दोनों का संतुलन, बुद्धि से हम उनको विजुलाइज कर रहे हैं, बुद्धि से हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन प्यार अर्थात दिल से उनको याद कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भक्ति योग भी कहा गया है। साथ साथ यहाँ हम इस योग में देखते हैं कि ये योग जो है वह हमें एक संतुलन सिखाता है। तो ये अगर देखा जाए तो समत्व योग है, बैलेंस सिखाता है, जहाँ हमें कारोबार में भी रहना है, जिम्मेवारियां भी निभानी है और अपनी स्व उन्नति भी करनी है, सेल्फ प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करना है। अगर हम ये कहें कि अगर हमें आध्यात्मिकता में बहुत रुचि है, अब हमें लगता है कि हमें तो मेडिटेशन ही करना चाहिए, हम ऐसे एनवायरमेंट में ही रहना चाहते हैं, हमें अपने कारोबार आदि में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको भी राजयोग नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ संतुलन सिखाया जाता है। ये संन्यास योग भी है और कर्म योग भी है, दोनों का बैलेंस। संन्यास किससे करना है? आपको संन्यास तो करना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। रेडी हैं आप? रेडी हैं? नहीं, नहीं है रेडी, सोच रहे हैं। नहीं, संन्यास तो करना ही पड़ेगा। संन्यास के लिए आपको ईश्वर को प्रतिज्ञा करनी ही पड़ेगी। लेकिन किसका संन्यास? न हमें कारोबार का संन्यास करना है, न हमें संबंधों का संन्यास करना है। हमें किसका संन्यास करना है? यहाँ परमात्मा सिखाता है कि हमें अपने कमजोरियों का, विकारों का संन्यास करना है। करेंगे ना? करेंगे ना? पक्का 100%? जाने के पहले ये पक्का प्रॉमिस आपको परमात्मा को करके जाना है, प्रतिज्ञा करनी है। एक का तो संन्यास करेंगे, हाँ, बाकी फिर धीरे धीरे शक्ति ईश्वर से लेंगे। तो ये संन्यास अर्थात विकारों का संन्यास। तो ये संतुलन, तो कर्म योग भी है, संन्यास भी है, विकारों का संन्यास, संबंधों का संन्यास नहीं, जो हमने सीखा भी कि संबंधों को हम कैसे निभाएं, लेकिन संबंधों में जो अटैचमेंट है वो भाव का संन्यास। और कौन से गुण को हम यूज करेंगे संबंधों में? हमने सीख लिया अभी, क्या करेंगे हम संबंधों में? क्या करेंगे? अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस भी रखेंगे और हर संबंध को शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। हर संबंध को हम वो प्यार की ऊर्जा जो है वो भेजेंगे। तो इसलिए ये संन्यास, संबंध में जो अटैचमेंट है, जो एक्सपेक्टेशंस है, उसका संन्यास, संबंध का संन्यास नहीं। हम वस्तु साधन का संन्यास नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो हमें अहम भाव है उसका संन्यास, जो हम उस साधन को अपना समझते हैं, मेरा है, वो संन्यास। ट्रस्टी बन जाएंगे, ट्रस्टी बनेंगे, ट्रस्टी अर्थात सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर ने हमें सहयोग दिया है, सेवा के लिए दिया है, कार्य करने के लिए दिया है। तो ट्रस्टीशिप, साधन वही यूज करेंगे लेकिन साधन जो है उसको हम सेवा अर्थ ट्रस्टी होकर यूज करेंगे, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये इस रूप से परमात्मा हमें संन्यास योग और कर्म योग दोनों का संतुलन, स्व उन्नति और कारोबार। अगर हम कहेंगे कि हमें कारोबार में रुचि नहीं है, अभी हमें सिर्फ मेडिटेशन करना है, तो वो भी संतुलन नहीं। यहाँ भी आप देखेंगे सभी समर्पित भाई बहन सुबह से रात तक उनकी रूटीन है, रूटीन है ना, सेवाएं, कारोबार चल रहा है ना, सब कुछ। तो हर एक की अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सुबह से लेकर सुबह को जो किचन में चाय आदि बनती है 3:30 बजे, तो उसके लिए मॉर्निंग जो हमारे भाई उठते हैं वो किस समय उनका रूटीन शुरू हो जाता है? 2:30 बजे से, तब से लेकर रात्रि तक। रात को आप देखेंगे सिक्योरिटी में भी भाई हैं, तो रात्रि को भी वो जागते हैं। तो इसलिए जिम्मेवारियां सब कुछ है, कारोबार है, लेकिन साथ साथ कौन सा संतुलन है? स्व उन्नति का, जो हमारी दिनचर्या है। मॉर्निंग हमारा ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन है, हमारा सुबह का 1 घंटे का जो डेली हमारी स्पिरिचुअल स्टडी है, जो रोज की हमारी परमात्मा की महावाक्य हम सुनते हैं वो हमारी स्टडी, शाम का हमारा नुमा शाम योग है जो मेडिटेशन के लिए बहुत सुंदर समय, शाम का भी नुमा शाम का समय 6:30 से 7:30 का बीच का समय, 6 से 7 का 6 से 7:30 का। भक्ति में भी कहते हैं ना कि शाम के समय में देवताएं विहार करते हैं, सुना है आपने? तो शाम की भी आरती होती है, तो ये समय जो है वो भी नुमा शाम का समय योग के लिए बहुत मददगार है, बहुत सुंदर समय है। उस समय भी यहाँ रोज मेडिटेशन करते हैं, रात्रि को भी परमात्मा को चार्ट लिखते हैं, जो कहा ना रोज हमें रात को लिखना है, कहा ना एक डायरी रखनी है और अपने जो भी शुद्ध संकल्प है वो उसको लिखना है, यहाँ हम रोज चार्ट लिखते हैं। तो सेल्फ प्रोग्रेस का भी एक रूटीन है और कारोबार भी कर रहे हैं, दोनों का संतुलन। तो वो ही योगी जीवन बनता जाता है। जब हमारा योगी जीवन बनता है तो क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या डिफरेंस हम फील करते हैं? तो हमारे पुराने जीवन शैली में हम ज्यादा अपने आप को इस देह की फीलिंग में रखते थे, देह की ही स्मृति, सारा दिन इसी के आधार से सोचना, इसी के लिए सोचना, इसको ही सशक्त करना, इसके संबंधों से को ठीक रखना, इसकी जिम्मेवारियों को फुलफिल करना, अर्थात हमारी सारे जीवन इस बॉडी कॉन्शियसनेस में ही हो रही थी और उसी के आधार से हम अपने जीवन की प्राप्तियां कर रहे थे। अब राजयोगी जीवन अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस नेचुरल अवेयरनेस हो जाता है। तो आत्मिक स्मृति में रहकर हम देह और देह के कारोबार को भी संभाल रहे हैं, उसको भी स्वस्थ रख रहे हैं और स्व उन्नति भी कर रहे हैं, दोनों का संतुलन। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस होकर हम हर रोल को निभा रहे हैं। तो हर रोल को हम बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, लेकिन किस अवेयरनेस में? आत्मा के गुणों को अवेयरनेस में। तो अगर हम अवेयर हैं कि आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर और अ फादर, तो क्या होगा? वो रोल कैसे प्ले कर सकेंगे और अच्छी तरह प्ले कर सकेंगे? प्ले कर सकेंगे क्योंकि प्यार, शांति, शक्ति की स्मृति से वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो हर रोल को हम सोल कॉन्शियस होकर अर्थात आत्मा के गुण और शक्तियों को अनुभव करते हुए प्ले करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अब तक ये जो लेफ्ट हाथ में जो इमोशंस थे वो ही नेचुरल थे ना, बार बार थोड़ा थोड़ा गुस्सा, थोड़ा थोड़ा अपसेट होना, थोड़ा थोड़ा ईगो, कंपैरिजन, देखा ना हमने जो लेफ्ट वाले इमोशंस, तो वही हम नेचुरली यूज करते थे। हम उसको, हमने कहीं ना कहीं यहां प्रोग्रामिंग क्या कर लिया था, वो नेचुरल है। अब हम क्या प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, कोडिंग सीख लिया ना, आपको सिखाया ना, अब कौन सी इमोशंस नेचुरल है? राइट साइड वाली, जो इमोशंस हमें भी एनर्जाइज कर रहे हैं और वातावरण को भी हम सहयोग दे रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, क्योंकि हमारा हर संकल्प, हमारी हर फीलिंग, हमारा हर इमोशन इंपैक्ट कर रहा है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, यू वॉन्ट, यू चूज और नॉट, बट इट इज इम्पैक्टिंग। तो इसलिए जब ये अवेयरनेस आ गई, ये समझ हमको मिल गई, तो अब हम अपने गुणों को, अपने वर्च्यूज को, अपने पॉजिटिव इमोशंस को नेचुरल बनाएंगे, यूज करते करते नेचुरल बन जाएंगे। आज गुस्सा क्यों नेचुरल हो गया है, कंपेयर करना क्यों नेचुरल हो गया, क्योंकि उस संस्कार को यूज करते करते उसको स्वभाव समझ लिया। अब ये गुणों को जब हम यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे ओरिजिनल नेचर फील होना शुरू करेंगे, है तो सही ओरिजिनल नेचर, लेकिन अनुभव करना शुरू करेंगे। तो इसलिए हम वर्चुअस नेचुरल हो जाएंगे। पहले पुराने समय में नेगेटिव सोचना, वीक थॉट्स आना, वेस्टफुल चिंता करना, ये सब नेचुरल था। अब राजयोगी लाइफस्टाइल में क्या है, हर चीज में हम मददगार बनेंगे, हम हर चीज में सहयोग देंगे, पॉजिटिव, पीसफुल, पावरफुल, प्रोडक्टिव थॉट्स होंगे, हर चीज में कंट्रीब्यूट करेंगे, हर चीज में हम सहयोग देंगे, हर चीज में हम वैल्यू एडिशन करेंगे। राजयोगी लाइफस्टाइल बना, हर जगह हमारा यही विचार होगा कि कैसे हम वैल्यू ऐड कर सके, हम कैसे सहयोग कर सके। अब पहले हमें लगता था कि यहां जो चल रहा है वो ऑटोमेटिक है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, इसलिए हमने ऐसा सोचा। अब राजयोगी लाइफस्टाइल में क्या होगा, क्या अनुभव करेंगे हम, कि यहां सब कुछ क्या है, मेरा चॉइस है, यहां सब कुछ क्या है, मेरा अपना चॉइस है, ये मैं इस आंतरिक संस्था की मालिक हूं, इस इनर ऑर्गेनाइजेशन की मैं मालिक हूं, मालिक है ना, बॉस है ना, लीडर है ना, मालिक है। तो अब तक हमने क्या समझा, सब कुछ बाहर में हमें कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल करना है, अपने क्लिनिक को, वहां की हमारी एक्टिविटीज को, फिर हमारे हॉस्पिटल की जिम्मेवारियों को, बच्चों को, जीवन साथी को, अपने और जो भी कारोबार रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ कंट्रोल करना है। और यहां जो है वो तो क्या करें, वो तो ऐसा ही है, मन तो ऐसा ही है, ये तो होता ही है, क्या करें, वो किसने अब तक कंट्रोल किया। लेकिन अब हमने समझा ये बाकी चीजें वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां सिर्फ सहयोग दे सकते हैं, यहां हम मालिक हैं। तो ये जीवन शैली जहां मालिक बन जाते हैं अपने आंतरिक स्व की, तो ये एक अंतर की जीवन शैली जहां हम फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं डेली लाइफ में। राजयोगी लाइफस्टाइल माना सुबह से रात तक हम कोई ना कोई ऐसे टूल्स अपनाते हैं जिससे हम मन की स्थिति को सशक्त कर सके। जैसे शरीर के लिए हमने अपनाया ना, रोज सुबह को हम उठ के ही क्या करेंगे, स्नान करेंगे, बॉडी को क्लीन करेंगे, फिर हम नाश्ता लेंगे, फिर उसके बाद हम क्लिनिक जाएंगे, फिर वहां भी हॉस्पिटल में भी या तो हमारा टिफिन आ जाएगा या वहां लंच करेंगे, तो दोपहर को लेट हो जाता होगा एक दो तीन, मगर लंच करेंगे, फिर शाम को चाय, फिर रात्रि को भोजन, फिर रात्रि को हम विश्राम करेंगे। तो ये हमने डेली इंटीग्रेट कर लिया अपने लाइफ में, कर लिया। आत्मा को भी सशक्त रखने का एक रूटीन हम डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर देंगे, राजयोगी लाइफस्टाइल। अर्थात सुबह से रात तक ये टूल्स जो हैं, हमने देखा एफर्मेशंस है, विजुलाइजेशंस है, जो हमें भोजन के समय पर, पानी के समय पर करना है, जो मॉर्निंग हमें उठकर थोड़े समय के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में तो इमीडिएटली आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज करें, लेकिन जो समय अभी उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी कर सकेंगे, कर सकेंगे 15 मिनट शुरू कीजिए, फिर आधा घंटा शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसको और जल्दी करते जाइए। रात्रि का समय थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना, भोजन भी थोड़ा, आप तो डॉक्टर्स हैं, आप गाइड करते ही हैं कि भोजन थोड़ा जल्दी खाना, और रात्रि को सोने के पहले 5-10 मिनट मेडिटेशन करना, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो होते हैं सोने के पहले, वही क्वालिटी ऑफ थॉट्स सारी रात को भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और उसी संकल्पों से हम सुबह उठते हैं। तो वी कैन डिसाइड विथ व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स वी वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, वी वांट टू बिगिन आवर डे। तो ये एक बहुत सुंदर जब रूटीन बन जाता है। और ट्रैफिक कंट्रोल यहां आपने अनुभव किया ना, बाहर आप जाते हैं तो सुनते हर घंटे, तो उसका एक बहुत सुंदर ऐप भी बना हुआ है जो हमारे पास जो प्रोफेशन में है वो यूज करते हैं। उसमें गीत तो नहीं बजा सकते क्योंकि आप मीटिंग्स आदि में होते, लेकिन थोड़ा बीप बजता है जिससे अटेंशन जाता है। तो ऐसे कई टूल्स से फिर ये राजयोगी लाइफस्टाइल बन जाती, जीवन बन जाता है, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, जहां आपकी प्रेजेंस भी औरों को शक्ति दे सकेगी, सुख दे सकेगी। तो चलिए कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करें। जैसे जैसे ये अभ्यास आप करते जाएंगे इजी होगा। जैसे ड्राइविंग में शुरू में, जस्ट लाइसेंस के बाद जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तो कैसे होता है, कॉन्फिडेंस से ड्राइव करते नहीं, हमें उस समय बहुत ध्यान रहता है कि अच्छा इंस्ट्रक्टर ने कहा ये करना है, ये करना है, वो करना है, और फिर हमारे साथ कोई ना कोई, हम शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी को बिठाते हैं साथ में। अब जिसको हम बिठाते हैं अगर वो हमें थोड़ा ज्यादा बोलने लगे ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो हम उसको कहते हैं शांत रहो। अगर वो हमें उस समय कहते चलो हम ये म्यूजिक ऑन करते, हम कहते नहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो ड्राइविंग पर। अब कुछ वर्षों के अभ्यास में हम बॉम्बे में देखते हैं मॉर्निंग को सब ऑफिस के लिए निकलते हैं जल्दी जल्दी में, नाश्ता भी कुछ अपने साथ ही कैरी कर लेते हैं, जैसे गाड़ी में बैठते हैं म्यूजिक भी ऑन कर लेते हैं, वॉकमैन से या ईयरफोन से कुछ बातचीत भी कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां बातचीत भी कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर्स भी जहां जा रहे हैं थोड़ा लेट हो गया है तो अपनी टीम को कह देते हैं आप पेशेंट को अंदर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अब पहुंच रहे हैं। अब ड्राइव कौन कर रहा है, बातचीत भी कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, गीत भी सुन रहे हैं, ड्राइव कौन कर रहा है जी, ड्राइव कौन कर रहा है, नेचुरल हो गया, अभ्यास हो गया ना, ईजी हो गया। ऐसे यहां भी फिर हम इतना सहज अभ्यास और सुख उसमें मिलता है, प्राप्ति का अनुभव होता है, फिर कर्म करते भी सहज हो जाएगा। चलिए कुछ समय के लिए इसका बैठकर फिर से अभ्यास करते हैं। मन बुद्धि को हम फिर से अपने ओर दिशा देते हैं, मन की आंखों से अपने उस आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन अब हमने समझ लिया है, मस्तक के मध्य में मैं एक दिव्य आत्मा विराजमान हूं, अ स्पार्क ऑफ डिवाइन लाइट, अ बीइंग ऑफ पीस। अपने इस दिव्य स्वरूप को देखें और महसूस करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के वाइब्रेशंस, शांति का प्रकाश मुझे आत्मा से चारों ओर फैल रहा है। अंतर में ये शांति महसूस हो रही है, रिलैक्स फील कर रहे हैं। शांति मेरा ओरिजिनल स्वभाव है, ये फील कर रहे हैं। इस शांति की महसूसता में अब मन को उस शांति के सागर के पास ले जाते हैं। मन की आंखों से देख रहे हैं कि सुंदर सितारा इस आवाज की दुनिया से पार जा रहा है। आई द बीइंग ऑफ लाइट ट्रैवलिंग बियॉन्ड बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ साउंड इन द वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। शांति की दुनिया, सुनहरी लाल प्रकाश का महत्त्व, मन की आंखों से सोल वर्ल्ड को विजुलाइज कर रहे हैं। मेरा स्वीट साइलेंस होम, यहां पहुंचते ही मैं आत्मा निश्चिंत हो जाती हूं। चारों तरफ साइलेंस और शांति है। मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं आत्मा भी शांति की आभा में स्थित हूं। अनेक दिव्य सितारे, सुंदर आत्माएं चमक रही है। ये शांति की दुनिया कितनी सुंदर है, स्वीट साइलेंस होम। और इन सुंदर सितारों के बीच एक दिव्य सितारा मुझे अपनी ओर खींच रहा है। द लाइट ऑफ गॉड, जैसे ही मैं इस परम ज्योति के समीप पहुंचता हूं, सुप्रीम लाइट के समीपता का अनुभव, शांति के सागर, प्यार के सागर के समीप पहुंचते ही परमात्मा पिता अपनी प्रकाश की बाहों में मुझे समा लेता है। परमात्मा का ये सानिध्य कितना दिव्य है। उस शांति के सागर से शांति का प्रकाश एक लेसर बीम के रूप में मेरे अंदर समा रहा है, मन में, हृदय में। परमात्मा का शुद्ध प्यार, अनकंडीशनल प्योर लव, मेरे मन को सुकून दे रहा है, मुझे कितना सिक्योर फील करा रहा है। शिव बाबा, आप सदा मेरे साथ ही हो, हर कदम पे, हर कार्य में अब सदा साथ हो। मैं मन से जैसे ही आपको साथ अनुभव करता हूं, आपकी सारी शक्तियां मुझे शक्तिशाली महसूस कराती है। मेरा हिम्मत का एक कदम और आपके हजार कदम सहयोग के। शिव बाबा, आप सुप्रीम सर्जन हो, सुप्रीम डॉक्टर हो, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूं। आपका एंजल हूं। आप मेरे साथ हो, मेरे कंपेनियन हो। आप मेरे द्वारा आपके अनेक बच्चों की संभाल कर रहे हो। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ये सुंदर रोल मिला है आपका इंस्ट्रूमेंट बनने का, आपका एंजल बनने का। शिव बाबा, आपकी सारी शक्तियां, आपका सेम प्यार, आपकी असीम शांति, एक सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आपका वरदानों का हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं सदा सुरक्षित हूं। अपने अंदर परमात्मा का ये सीम प्यार, उनकी शक्तियों को समाते हुए, अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए, हम फिर से अपने आप को यहां इस संगठन में देख रहे हैं। आंखें अगर बंद है तो आंखें खोल दे। अंतर में परमात्मा के उस प्यार को, शक्तियों